ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಶ್ಚ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾತ ವಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾಶ್ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರವಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. तो कल हम 11वां श्लोक तक चर्चा किए थे, जिसमें ब्रह्मा जी अभी तक भगवान को पिता के रूप में स्वीकार किया और एक पति के या प्रभु के रूप में स्वीकार किया. खास करके 9वां श्लोक में उन्होंने कहा कि आप मेरा आद्य, उसने पिता के रूप में स्वीकार किया. पिता जिस प्रकार पुत्र को दंड भी देता है कभी और कभी माफ़ भी करते हैं, तो आप मुझे जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ. 10वां श्लोक में ब्रह्मा जी ने व्यक्त किया, नाथवान इति, मैं आप मेरे नाथ हो इस प्रकार मैं स्वीकार करता हूँ. इसलिए क्षमस्व, क्योंकि दास के ऊपर हमेशा अनुकंपा दिखाना चाहिए, ऐसी भाव से 10वां श्लोक में उन्होंने किया. बाद में 11वां श्लोक में ब्रह्मा जी अपना दीनता को व्यक्त कर रहे हैं, क्यों जब कोई अपने आप को दास मानता है, साथ साथ में दीनता आना चाहिए. जो ऐसा दास का क्या फ़ायदा जो अपने आप को बड़ा मानता है, भले कहता है दास लेकिन बड़ा मानने में क्या को तो दास हुआ नहीं. तो अपने आप को नगण्य सोचना, निम्न मानना, तुच्छ मानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के अंग में. ब्रह्मा जी 11वां श्लोक में इस बात को कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ. ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड के अंदर मेरा जो शरीर है, मेरा हाथ के 7 गुना बड़ा है, यानी इतना छोटा है. और ये ब्रह्मांड के ऊपर इतना इतने आवरण है, और ऐसे ब्रह्मांड आपके रोमकूप से अनेक उत्पन्न हो रहे हैं। जिस प्रकार धूल के कण, जैसे आप दरवाज़ा खोलते खिड़की खोलते हो, छोटा सा छेद से भी अनेकों धूल के कण उत्पन्न होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से किए होंगे कि अगर आप कमरे में बैठे होंगे तो खिड़की में दरवाजे में कहीं एक छोटा सा छेद है और उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उसको ध्यान से देखिए, आपको एक छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, अनंत दिखाई पड़ते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, आपका एक एक रोमकूप से इतने अनंत ब्रह्मांड निकल रहे, तो अनेकों अनंत रोमकूप से कितने ब्रह्मांड निकलते होंगे, और मैं एक ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा जीव के रूप में हूँ, मैं अति तुच्छ हूँ। तो अपनी दीनता को उन्होंने व्यक्त किया। उसके बाद फिर 12वां श्लोक में, हो सकता है कि पिताजी जो है थोड़ा कठोर हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी कठोर नहीं हो सकती है। अभी ब्रह्मा जी ने पूरा अभी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे अभी मेरे माँ हो। कल इस बात को हम चर्चा किया, किस प्रकार भगवान के पास ही ऐसा सामर्थ्य है जो हर प्रकार का संबंध हमसे जोड़ के रह सकते हैं। माता दाता पितामह, वैसे आप प्रभु साक्षी जो जो बोलो, मित्र हो, हर प्रकार के संबंध के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। तो अभी माँ के रूप में संबोधित करें, माँ से बढ़कर तो कोई बड़ा संबंध होता नहीं है कोई बच्चे को। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, अभी आप मेरे माँ हो। तो अभी ये जो चर्चा है पूरा 17 श्लोक तक चलता है, 12वां श्लोक से लेकर 17वां श्लोक तक। आप मेरे माँ हो, मुझे आप माफ़ कर दो। तो 12वां श्लोक का थोड़ा उच्चारण करने के प्रयास करेंगे। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्ष जायते किं कल्पते मातुरदोक्ष जायते किं कल्पते मातुरदोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियद्यप्यनन्तः तवास्ति कुक्षे कियद्यप्यनन्तः
उच्छेपणं
गर्भगतस्य पादयो पणं गर्भगतस्य पादयो कल्पते गातुं दोक्ष जायसे तो उत्क्षेपणम, ये शब्द का अर्थ है लात मारना। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, गर्भगतस्य गर्भगतस्य जो है, जो गर्भ में रहने वाला जो बच्चा है, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो क्या करता है वो पैर को पैर से लात मारता है। पादयो अपने चरणों से, अपने पैरों से माँ के पेट को लात मारता है। ये स्वभाव है, इसलिए बच्चा जब बाहर भी आता है वो भी ऐसे ही करता है, क्योंकि अंदर भी ऐसे ही करता है तो बाहर भी ऐसा करता है, क्योंकि परेशान रहता है अंदर, तो ये स्वभाव है। तो कल्पन्ते मातुः, तो क्या इसको देख के किम माँ क्या बच्चे के ऊपर नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है? इससे माँ को पेट में कभी कभी दर्द होता है, तो इसी के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत लात मारता है अंदर से। तो क्या माँ को इसको देख के गुस्सा आता है, क्या उसको बुरा मानती है? नहीं मानती है। दूसरे शब्दों में किम कल्पते मातुरदोक्ष जाय से, तो किम कल्पते कि माँ इसको देख के क्या समझती है, तो डज द मदर टेक ऑफेंस? नहीं, ये ऑफेंस नहीं लेती है। मातुर अधोक्ष जाय से किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम्। हे भगवान, आप अधोक्षज हो, यू आर अधोक्षजा। आप अधोक्षज क्यों हो? क्योंकि अधा अक्षजा, इसका अर्थ है जो ये तो एक अर्थ है कि जो भगवान को अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, ऐसा एक अर्थ है। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं, वो है अधोक्षज मीन्स दैट ही वॉज बॉर्न अगेन अंडरनीथ द एक्सल ऑफ द कॉट। तो आप जानते हो तृणावर्त का वध भगवान ने किया, सॉरी तृणावर्त का नहीं, तृणावर्त का भगवान करें, शकटासुर का जब वध किया, तो उनको एक जो ठेला गाड़ी है उसके नीचे सुलाया गया था भगवान को। तब उन्होंने क्या किया, उन्हीं चरण चरणों से ऐसा लात मारा, लात मारने से क्या हुआ, पूरा जो गाड़ी है एकदम बिखर के नीचे गिर पड़ा। जैसे नीचे गिर पड़ा, सब जितने भी व्रजवासी है उधर के यशोदा में, सब लोगों ने सोचा कि ऐसा लगा कि हमारे पुत्र को फिर वापस जीवन प्राप्त हुआ हो, ऐसा उनको लगा। अधा मंस मतलब नीचे, जो एक गाड़ी के नीचे जब उसको सुलाया गया है, तो जा मतलब फिर वापस जन्म लेना। जब उनको गाड़ी के नीचे जब सुलाया गया था कृष्ण को, तो सबको ऐसा लगा इस गाड़ी को मार के या उसको या ठेला गाड़ी को पूरा तहस नहस कर दिया और कृष्ण फिर भी बचे रहे, कुछ नहीं हुआ उनको, तो सब लोगों को ऐसा लगा कि हाँ जा उनका जन्म हुआ वापस, किस वापस जन्म हुआ उनका, ऐसा वो लोग मानने लगे। इसलिए अभी ब्रह्मा जी का यही बात था कि मैं आपके जो पेट में मैं बहुत लात मारा, मतलब मैं भी अपराध किया, तो माँ के पेट में बच्चा जिस प्रकार लात मारते हुए भी माँ बच्चे कुछ दोषी नहीं रह रहते, उनको माफ़ कर देती है, बुरा नहीं मानती, वैसे मैंने भी घोर अपराध किया, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके पेट के अंदर है, तो उस ब्रह्मांड के अंदर मैं हूँ। जैसे आपके अंदर ये ब्रह्मांड है, वे ब्रह्मांड जो है वो आपके गर्भ के समान है, और गर्भ के अंदर मैं हूँ और मैं उसको लात मारा, अपराध किया, तो अपराध किया तो क्या हुआ, आप मुझे बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि माँ जिस प्रकार बुरा नहीं मानती है, अपने गर्भ के अंदर बच्चा पेट में लात मारता है, तो आप अधोक्षज है, तो आप भी ऐसे ही लात मारे थे गाड़ी को, वो गाड़ी नीचे गिर पड़ा, तो सारे व्रजवासियों को आनंद प्राप्त हुआ इसको देख के। तो उसी प्रकार माँ को बहुत आनंद प्राप्त होता है जब बच्चा भले ही पेट में लात मारता है, कभी कभी बाहर आने के बाद भी माँ का स्तनपान करके बच्चा क्या करता है, उन्हीं स्तनों को लात मारता है जिनसे दूध पिया है, जिसको उसको रो रहा था, कमज़ोर हो गया शरीर, रो रहा था, और जैसे माँ ने दूध पिलाया बच्चे को, और उसी दूध से उत्पन्न हुआ जो शक्ति से क्या करता है, वही बच्चा उन स्तनों को लात मारता है, माँ को लात मारता है। तो फिर भी माँ इसको देख के बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, आप अधोक्षज हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दोष है उसको आप माफ़ कर दीजिए। तो इस श्लोक में एक बड़ा तीसरा लाइन में एक शब्द आया, किम अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम्। तो किम अस्ति नास्ति, ये भौतिक ब्रह्मांड के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये सत्य है, कुछ लोग कैसे असत्य है, या मायावादी लोग कहते हैं कि जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैष्णव कहते हैं कि नहीं ये जगत भी सत्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चाहे किसी भी प्रकार का मत क्यों ना हो, ये जगत सत्य हो या मिथ्या हो, कुछ भी हो, अंततः सभी लोग स्वीकार करते हैं कि आपके पेट के अंदर है। या सत्य हो मिथ्या वो दूसरी बात है, वो तो चर्चा बात की बात है, लेकिन निश्चित रूप में ये जो ब्रह्मांड है आपके पेट के अंदर है, वो मिथ्या भी हो सकता है सत्य भी हो सकता है। किम अस्ति नास्ति, वो सिद्धांत में मैं जाऊंगा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं किम अस्ति नास्ति वेदर डेसिग्नेटेड बाई वेरियस फिलोसफर रियल और अनरियल, दैट इज एक्चुअली आउटसाइड योर एब्डोमेन। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको स्तुति किया, उनको प्रार्थना किया कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब कोई प्रश्न उठा सकता है, क्या प्रश्न उठा सकता है कि ठीक है, माँ के पेट में बच्चा रहता है तो तब उसको बच्चा कैसे, तब माँ नहीं बोलता है वो, पेट के अंदर थोड़ी ना माँ बोलता है, नहीं जब वो बाहर आते तभी माँ बोलता है कि नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं केवल मैं आपके पेट के अंदर ही नहीं था, मैं बाहर भी आया हूँ। जैसे पेट माँ के पेट के अंदर बच्चा बाहर भी आता है तो इसका प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी अगले श्लोक में कहते हैं कि मैं किस प्रकार आपके पेट से आया हूँ उसका प्रमाण देते हैं, क्योंकि जब तक वो पेट में नहीं, पेट में रहता है बच्चा, वो माँ को माँ नहीं कहता है, वो है सच में, वो उसका पुत्र है। तो कृष्ण एक कृष्ण ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि बच्चा उसी को कहा जाता है जो पेट से बाहर आता हो। तो ब्रह्मा जी ने प्रमाण दिया कि आपको याद है शास्त्रों में वर्णन है, कि आपके भागवत में वर्णन है कि मैं आपके ही पेट से बाहर आया। तो वो लीला को वर्णन करते किस प्रकार ब्रह्मा जी नारायण या गर्भोदाक्ष विष्णु के पेट से वो बाहर निकले, तो वो श्लोक आगे हम चर्चा करेंगे। जगत्रयातोदधि संप्लवो उदे जगत्रयात्रयान्तोदधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तु इति वान्न वै मृषा विनिर्गतो जस्तु इति वान्न वै मृषा किन्तु ईश्वरत्वं न विनिर्गतोऽस्मि किन्तु ईश्वरत्वं विनिर्गतोऽस्मि जगत्त्रयान्दो दधि संप्लवो दे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तु इति वाङ्न वै मृषा किन्तु ईश्वरस्त्वं न विनिर्गतोऽस्मि तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ये प्रूफ दे रहे हैं कि मैं किस प्रकार आपका पुत्र हूँ, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता तब तक उसको पुत्र नहीं बोला जाता है। तो मैं आपके नाभि से प्रकट हुआ, आपको उधर से प्रकट हुआ हूँ, इसका प्रूफ देते हैं। क्योंकि अनेकों शास्त्र में वर्णन है किस प्रकार तीन विष्णु आप सबको मालूम है। सबसे पहले है कारणोदाक्ष विष्णु, उससे गर्भोदाक्ष विष्णु उत्पन्न होते हैं। कारणोदाक्ष विष्णु के रोमकूप से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में कारणोदाक्ष विष्णु गर्भोदाक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर से जल प्रकट होता है और आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं। आधा ब्रह्मांड को भर के उस जल में वो शयन करते हैं। जब शयन करते हैं तो क्या हुआ, तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं जयत्रयादो संप्लुतो संप्लवोदे। संप्लवोदे मतलब उदय मतलब वाटर, या संप्लवोदे पूरा संहार होने के बाद, पूरा प्रलय होने के बाद सब कुछ पानी पानी हो जाता है और उस प्राण उस पानी में नारायणस्य उदर, आप नारायण के रूप में सोए हुए थे, आपके उदर से नाभि नालात क्या हुआ, आपका उदर का जो नाभि है उदर से एक नालात यानी एक नाल प्रकट हुआ, कमल का नाल प्रकट हुआ और विनिर्गतस्य बाहर प्रकट हुआ और उसमें जो अजा यानी ब्रह्मा जी अपने आप को कहते हैं कि अजा मुझे बोलते हैं लेकिन अस्तित्व में मैं अजा नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा जन्म है लेकिन फिर भी बोलते हैं अजा, क्योंकि मुझे कोई मेरी विशेष माता पिता करके कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो वा ऐसा बोला जाता है मुझे न वही मृषा किंतु ईश्वरस तवत न विनिर्गतोस्मि दस आई एम नॉट आई एम नॉट ब्रॉन फ्रॉम यू। इनका प्रश्न ये है क्या मैं आपसे प्रकट नहीं हुआ, मैं आपसे प्रकट हुआ हूँ, आई एम बॉर्न फ्रॉम यू, ये शास्त्र का प्रमाण है, मैं भी जानता हूँ इसको, मैं आपसे ही प्रकट हुआ हूँ, मेरा जन्म आपके गर्भ से हुआ है, जिस प्रकार माँ बच्चे को जन्म देती है तो मैं आपसे प्रकट हुआ हूँ, इसलिए नारायण जो है आप मेरी माँ हो, यू आर माई फादर, सॉरी यू आर माई मदर, पहले फादर हो गया अभी यू आर माई मदर। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये श्लोक में संक्षिप्त में कहा। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मा सकिला अदिशा किल लोकसाक्षी आत्मास्य लोकसाक्षी आत्मास्य दिश किल लोकसाक्षी नारायणं गवनरभूजलाय जलायनात् नारायणं गवनरभूजलायनात् त्वच्चापि सत्यं न त्वेव माया अच्छापि सत्यं न तैव माया नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना आत्मास्यदीश किल लोकसाक्षी नारायणोगम नरभूजलायन तच्चापि सत्यं नतैव माया।
नारायणस्त्वं सर्वदेहिनां आत्मस्य देश अखिल लोक साक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् सत्यं न तवैव माया।
तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी ये श्लोक क्यों उच्चारण कर रहे हैं, तो कृष्ण के साथ एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए। सबसे पहला, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ क्योंकि क्योंकि मैं आपसे प्रकट हुआ हूँ, ये बात स्थापित करने के बाद तो कृष्ण का आर्ग्यूमेंट था, हे ब्रह्मा, तो तुम तो नारायण का पुत्र हुआ, मेरा पुत्र कहाँ हुआ? पुत्र तो नारायण का हुआ ना, तो मेरे पास आके क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तब इस बात को स्थापित कर रहे हे कृष्ण, ये नारायण कौन है? ये नारायण कोई और नहीं है, त्वम आप ही हो, नारायणस्त्वम। तो ये बात प्रकट कर रहे, ये बात सिद्ध कर रहे कि यू आर दैट नारायण। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप कैसे, मैं कैसे नारायण हूँ? तो नारायण कहाँ सोया हुआ है? नारायण तो सोए हुए है एक जल के ऊपर, जल में सोए हुए है, और मैं तो वृंदावन में हूँ, मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूँ, और ग्वाल बाल है और अन्य लोग है, पेड़ है, वृक्ष है, और नारायण तो जल के ऊपर सोए, उनको नारायण है, तो आप तो उनसे प्रकट हुआ है, तो मैं आपका माँ नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी नारायण हो, क्योंकि नारायण का मतलब है, दूसरा मतलब है, और एक मतलब है, एक मतलब है नारायण, आयन मतलब सोए हुए है, कहाँ सोए हुए हैं? नारा, नारा जो पानी है उसमें सोए हुए है, और दूसरा मतलब है नारायण का, जो ब्रह्मा जी या श्री कृष्ण ठाकुर लिखते हैं, नारा मतलब, नर मतलब सारे जितने भी जीव है, आयन हाँ जिनसे सारे जीव उत्पन्न होते हैं उनको नारायण कहा जाता है। जैसे इस श्लोक में अधिशाकिल लोक साक्षी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आर यू नॉट ओरिजिनल नारायण सुप्रीम कंट्रोलर, सिंस यू आर द सोल ऑफ एवरी एम्बॉडीड बीइंग एंड द एटर्नल विटनेस ऑफ ऑल द लिम्स। तो ये नारायण का और एक परिभाषा है, जो सारे जीव जिनसे उत्पन्न होते हैं और सब जीवों के हृदय में वो निवास करते हैं, तो नारायण नरों के शरीर में निवास करने वाले हैं या परमात्मा है, तो इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। तो हे कृष्ण, आप कौन हैं? आप भी नारायण हो। ये शब्द नारायण केवल उसी को सूचित नहीं करता है जो गर्भ सागर में सोए हुए हैं, और दूसरा बात ये है, नारायणोंगम, नारायणोंगम नरभू जल जलायनात, ये जो जलायनात जल में जो सोए हुए जो नारायण हैं वो कौन है? वो कोई और नहीं है, नारायणो अंगम, आपका अंग है, ही इज योर अंगा, योर पार्ट, योर पार्ट एंड पार्सल। तो इधर बहुत सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत का चर्चा किया गया है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर टीका लिखते हैं, ये स्थापित करते हुए कि किस प्रकार कृष्ण ही नारायण है और नारायण कृष्ण के अंग या अंश के रूप में है, कृष्ण जो है अंशी है, इस बात को सिद्ध करते हुए अनेकों जगह से प्रमाण देते हैं, खास करके भागवतम के जो जहाँ गर्भोदाक्ष विष्णु, क्षीरोदाक्ष विष्णु, उन सबका चर्चा हुआ है, उन सबका प्रमाण देते हैं। एंड व्हाट इज द अपियरेंस ऑफ दिस फॉर्म नारायण दैट इज डिस्क्राइब इन वर्ड बिगिनिंग तद्वई, तो ये पूरा श्लोक के चर्चा करते हैं, इसके पूरा टेक्निकलिटीज में ही जाएंगे, लेकिन सार रूप में हम ये बात को जानेंगे कि भागवत में वर्णन हुआ है, ये तेज हम सकल पुंसन कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार व्याकुलम लोकम उदयंती युगे युगे। जितने भी अवतार है, जितने भी रूप है भगवान के, वो सब कृष्ण के अंश है या कला है, और नारायण जो है भगवान के अंश ही नहीं है, अंश के अंश है, वो कला है, कला स्वरूप है, कला मतलब एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। तो ये भागवत के श्लोक का पहला स्कंद का 3rd अध्याय में श्लोक आता है, वहाँ अवतारों का लिस्ट दिया गया है, पहला अवतार, दूसरा अवतार, ऐसे अनेक अवतारों का लिस्ट दिया, 24 अवतारों का लिस्ट दिया। तो उस अवतारों के लिस्ट में सिद्ध गोस्वामी पाद कृष्ण का भी नाम डाल देते हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं 24 तक गिना हूँ, कितना गिनते जाऊँ, अवतारा असंख्य है, अवतार जो है अनेक, भगवान के असंख्य अवतार है। तब ये श्लोक को उच्चारण किया उसके बाद कि ये 24 अवतारों की लिस्ट में मैंने कृष्ण का नाम डाल दिया, गलती कर दिया, माफ़ कर दो, कि अभी मैं एक श्लोक को उच्चारण करता हूँ, उसमें ये बताऊँगा कि कृष्ण में अन्य अवतारों में अंतर है। इसलिए उन्होंने यही श्लोक उच्चारण किया। क्या उस श्लोक है कि ये ते चंसल अंशकड़ा पुमसान, ये ते जितने भी अभी वर्णन किया है अवतारों का लिस्ट में, वो कब सब कौन है, अंशकड़ा, कृष्ण के अंश है और कड़ा है, ये ते चंसकड़ा पुमसान। लेकिन कृष्ण जो है इन 24 लिस्ट में अलग है। कृष्णस्तु मतलब बट कृष्ण इस अवतारी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, बाकी सब अवतार है या अंश के अंश है। तो ये भागवती प्रमाण है। खास करके ये जो कन्फ्यूजन है लोगों में, खासकर दक्षिण भारत के लोगों में रहता है, कि वो सोचते हैं कि नारायण से सब उत्पन्न होते हैं, कृष्ण भी नारायण से उत्पन्न हुए, नारायण मूल है और बाकी सब अवतार है, जो विष्णु है वो कहीं और ऊपर है, और वो कभी राम के रूप में आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर कभी विष्णु, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, ऐसा मान्यता है। लेकिन वो गलत है, ये स्पष्ट रूप में अनेकों शास्त्रों में, खास करके भागवत उसका प्रमाण है, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद उसका प्रमाण है, केशवद्रीता नरहरियुक्त रूपा, केशवद्रीता कूर्मस्वरूपा, केशवद्रीता राम शरीरा, केशवद्रीता दशविध रूपा। केशव केवल कृष्ण का नाम है, और कोई अवतार को केशव नहीं कहा जा सकता है। जैसे राम को नारायण कर सकते हो, कह सकते हो, या आप नरसिंह को नारायण कह सकते हो, या किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये केशव जो नाम है वो केवल कृष्ण को लागू होता है, क्योंकि केशी राक्षस को किसी ने वध नहीं किया, नोबडी हैज किल्ड। तो केशवद्रीता दशविध रूपा, जितने भी अवतार है वो केशवद्रीता, केशव ने धारण किया है। उस बात को ब्रह्मा जी इधर स्पष्ट कर रहे हैं कि नारायणस्तम, आप ही नारायण हो, या नारायण जो है आपके अंग है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध प्रमाण है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में, नारायणो अंगस नरभूजलान तच्चापि सत्यम न त्रैव माया। तो आपका जो रूप है वो सत्य है, न तो माया, ये माया का माया से उत्पन्न हुआ नहीं है, ये आपका जो रूप है वो सत्य है। क्योंकि पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा ये जगत जो है वो सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, जैसे अलग अलग दार्शनिक कहते हैं, मैं उससे चिंतित नहीं हूँ, लेकिन आप जो है वो सत्य है, आप माया से प्रकट नहीं हो। तो ये बात ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है आप तो बच्चे हो ना, यू आर ए स्मॉल किड। तो बच्चा जब माँ के घर में रहता है, बच्चा का स्वभाव मोहित हो जाना, ऐसा तुम असत्य को सत्य मान रहे हो, तो ऐसा कृष्ण आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है आप गर्भ के अंदर हो, गर्भ के अंदर बच्चा मोहित मोहग्रस्त होने का संभावना रहता है, तो निश्चित रूप में जिस नारायण को तुम सोच रहे हो या जिस भौतिक जगत देख रहे हो, ये सब असत्य है, इल्यूजन है, तुम्हारे स्वप्न मात्र है। अस्तित्व में तुम मुझे माँ करके संबोधित कर रहे हो, तो ये माँ कहने में कोई सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा मोहित हो सकता है, ही मे बी कन्फ्यूज्ड, ये मोह में तुम अपने आप को, ये तुम इस जगत को और ये नारायण को, इन सब को सत्य मान रहे हो। इस बात को खंडन करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तच्चापि सत्यम, आप सत्य हो, नारायण सत्य है, ये बात सत्य है कि नारायण आपके अंश है, और न तो माया, ये माया से उत्पन्न हुआ नहीं है, ये ब्रह्मा जी इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। और आगे के श्लोक में इसी बात को और विस्तृत तरीके से कहते हैं कि किस प्रकार आपका ये जो शरीर है, मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है, अच्छा एक ब्रह्मांड के अंदर जल है, वो जल में नारायण सोए हुए है, इसका मतलब नारायण का शरीर जो है ये ब्रह्मांड के द्वारा सीमित किया गया है। अगर किसी का शरीर सीमित है तो वो तो भगवान नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि नहीं? ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर जल है, जल के अंदर नारायण सोए हुए है कि नहीं? जब नारायण सोए हुए है इसका मतलब ब्रह्मांड के द्वारा नारायण का जो शरीर है वो सीमित है, कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो उस आर्ग्यूमेंट को खंडन करने के लिए ब्रह्मा जी आगे के श्लोक को उच्चारण करते हैं। तच्छे जलस्तम तव सज्जगद्वपुः तच्चे जलस्त्वं तव तच्चे जलस्त्वं सज्जगद्वपुः तच्चे जलस्त्वं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवस्तदैव किम्मे न दृष्टं भगवन् सदैव किं वा सुदृष्टं हृद्मे तदैव किं वा सुदृष्टं हृद्मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि तच्चे जलस्तं तव सज्जगद्वपुः तच्चे जलस्तं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि
जलस्तं तव
सज्जगद्वपुः
किं मे न दृष्टं भगवन् तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपत्येव पुनर्दृष्टि
तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अभी नारायण जो है अभी सोए हुए है जल में। एक तो यह है कि वो पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर जल है, जल के अंदर सोए हुए, यही नारायण भी सीमित है ब्रह्मांड के द्वारा। अगर वो सीमित है निश्चित रूप में भौतिक जगत के है, ये सब मटेरियल प्लेटफॉर्म, तो उसको खंडन करने के लिए, उस आर्ग्यूमेंट को खंडन करने के लिए इस बात को कहते हैं। और ऐसा बात है कि नारायण अगर उनका एक भौतिक स्वरूप है तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जब मैं प्रकट हुआ, आप सबको मालूम है कि नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शुरुआत ब्रह्मा जी को केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रही थी, नॉट एबल टू सी एनीथिंग। तो बहुत कन्फ्यूज थे क्या है, तो उन्होंने देखा एक कमल जैसा है, नीचे एक होल है, تو نال کے اندر گئے, نال کے اندر نیچے جی ہزاروں سال تک نیچے نیچے جی گئے, لیکن ان کا انت معلوم نہیں پڑا. تو برہما جی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا شریر بھوتک ہوتا مجھے دکھائی پڑنا چاہیے تھا. تو انہیں کہا تچے جلس تو سج جگت وپو ہو. مائی ڈیئر لارڈ, اف یور ٹرانسل باڈی وچ شیلٹرز دا انٹائر یونیورس ایکچولی لائنگ ڈاؤن اپان دا واٹر, دین وائی ور یو ناٹ سین وتھ بائی می؟ ایسا کیسے کہ میرے دوارا میں آپ کو درشن نہیں کر پایا؟ یعنی اگر آپ ادھر سوئے ہوئے رہتے اور آپ کا ایک بھوتک شریر ہوتا تو میں نیچے نیچے گیا تو دکھنا چاہیے تھا آپ کا شریر مجھے, تو ایک بات تو دکھا نہیں. تو تب کوئی آرگیومنٹ کر سکتا ہے کہ کرشن کیا کہہ سکتے ہیں, برہما جی آپ تو چھوٹے بچے تھے نا, تو بچہ کو کبھی کبھی کچھ چیز دکھائی نہیں پڑتا ہے, ہو سکتا ہے نہیں دکھائی پڑے. تب برہما جی نے کہا کم وا سدرشم ہدی میں تدیو, اگر ویسا ہے تو میں اوپر آیا, تھک کے اوپر آ گیا. اوپر آنے کے بعد میں نے یہ شبد سنا, کیا شبد سنا؟ تاپا تاپا. تو آپ کو بھاگوت میں ورنن ہے کس پرکار جب برہما جی کا پراکٹ ہوا تو تھک گئے, وہ کنفیوز ہو گئے, تب اوپر آتے ان کو شبد سنائی پڑا تاپا تاپا. تو یہ شبد سنتے ہی برہما جی تپسیا کرنے لگے, اور برہما جی جیسے تپسیا کرنے لگے تو بھگوان پرکٹ ہو گئے ان کے ہردے میں. اس لیے کہتے کم وا سدرشم, یعنی جیسے میں تپسیا کیا تپسیا کرتے کرتے تو میرے ہردے میں پرکٹ ہوئے, اور پرکٹ ہو کے جیسے آپ نے مجھے گیان پردان کیا میں آپ کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن غائب ہو گئے. کہ ایو پنر ویدرشی, ویدرشی مطلب آپ پھر واپس کیسے غائب ہو گئے؟ تو اس شلوک میں سار میں برہما جی کہہ رہے کہ آپ جو ہے میرے دوارا سب سے پہلے میں پریاس کیا تو درشن نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھوتک نہیں ہو. اگر بچے کے روپ میں اگر سمجھتے ہو کہ میں درشن نہیں کر پایا تو واپس آ کے میں تپسیا کیا تو درشن دیے, خالی بیٹھ کے تپسیا کرنے سے آپ کی کرپا سے درشن ملا تو ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے دھیان کرنے سے مل گیا ہوگا, لیکن میں پریاس کیا واپس اگین کہ آپ کو میں درشن کروں پھر واپس آپ کو پکڑ لوں آپ کا شرن لوں, لیکن آپ واپس غائب ہو گئے. یعنی میں میرا جنم بھوتک ہوئے, میرا جنم بھوتک ہے اور میرا آنکھ بھوتک ہے, اور آپ کا جو شریر دیویہ ہے, لوگوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ برہمانڈ کے اندر آپ کا شریر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ برہمانڈ کے دوارا آپ کا بھوتک شریر, آپ کا شریر سیمت ہے, آپ کا شریر اسیم ہے, اور یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ یہ شریر بھوتک برہمانڈ کے اندر ہے لیکن یہ برہمانڈ کے باہر بھی ہے, برہمانڈ کے باہر بھی ہے. تو وہ ثبوت دیتے ہیں کیسے برہمانڈ کے باہر کیسے ہے. تو یہ اگلا شلوک ہے. اتریو مایا دھمناوتارو دھمناوتارے اتریو مایا دھمناوتارے یس پرپنچسیا بہیرسفٹسیا یسیا پرپنچسیا بہیرسفٹسیا کرشنسیا چانترجٹرے جنسیا مایا تمیو پرکٹی کرتی कृतं ते माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते अत्रैव माया दमन दमनावतारे अत्रैव माया दमनावतारे یسیا پرپنچسیا بہیرسفٹسیا یسیا پرپنچسیا بہیرسفٹسیا کرشنسیا چانترجٹرے جنسیا कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनस्य माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते तब ये आर्ग्यूमेंट कुछ लोग कह सकते हैं, अरे ब्रह्मा जी अभी आपने कहा कि शुरुआत में कि हे भगवान आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड है या ये गर्भ जो है आपके शरीर में है वो गर्भ के अंदर मैं हूँ, अभी आप कहते हो कि ब्रह्मांड के अंदर नारायण है और उसके अंदर से एक नाल प्रकट हुआ, तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। ऐसा कैसे कि एक घर में एक घटा है, एक पॉट है, तो ये मान सकते हैं घर में एक घड़ा है और घड़े के अंदर कोई व्यक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक घड़े के अंदर घर कैसे हो सकता है, क्योंकि नारायण जो है ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर सोए हुए हैं, जल है उसके ऊपर सोए हुए हैं। तो कुछ लोगों से पहले ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि भगवान के अंदर ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी है, तो कन्फ्यूजन है कि नहीं। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ये श्लोक उच्चारण करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए आप ब्रह्मांड के अंदर भी हो और बाहर भी हो। इस श्लोक को उच्चारण किया गया है, क्या है वो कि अतैव माया दमनस्य दमनावतारे। माय डियर लॉर्ड, इन दिस इनकार्नेशन यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ माया। तो ब्रह्मा जी इस बात को सिद्ध करने के लिए सीधा कृष्ण को संबोधित करते हैं, हे कृष्ण आप इस रूप में, मैं जिस रूप को देख रहा हूं ये रूप में आए हो, किसके लिए आए हो, इसी बात को सिद्ध करने के लिए आए हो कि आप ब्रह्मांड के बाहर भी हो और ब्रह्मांड के अंदर भी हो। तो इसके द्वारा ये साबित कर रहे हो कि आप माया का पूर्ण माया को अपने आदिश अधीन रखते हो, माया का आदिश हो। तो ऑल दो यू आर नाउ विद इन दिस यूनिवर्स, आप कहाँ हो, ब्रह्मा जी कहते हैं आप कहाँ हो, अभी इस ब्रह्मांड के अंदर हो और आपका ये पूरा सृष्टि जो है आपका ही है, लेकिन फिर भी कहाँ हो आप, अभी इस सृष्टि के अंदर हो और आपने इस बात को स्पष्ट रूप में दिखाया, और किसको दिखाया, आपकी माँ को दिखाया। इसलिए कहते हैं कि मायावतम एव जनया, ये श्लोक में एक शब्द आया कृष्णस्य चांतर जटरे जनन्या, आपकी यो जननी जो है यानी माँ यशोदा माई को दिखाया। तो ब्रह्मा जी उस लीला का सबूत दे रहे, कौन सा लीला है, ब्रह्मांड को अपने पेट में दिखाने वाली लीला यशोदामय को। यशोदामय को दो बार कृष्ण ने दिखाया ब्रह्मांड को अपने उदर में, एक बार तो कोई कारण नहीं था ऐसे दिखा दिया, तो यशोदामय कृष्ण को दूध पिला रही थी स्तनों से, उनकी मुख की सुंदरता को दर्शन कर रही थी, करते करते बस उसको उनको छूने ही जा रही थी, कृष्ण ने सोचा अच्छा मुझे चूमते हो, मैं कौन हूँ जानते हो, तो उन्होंने बस वो उसको क्या बोलते हैं, यॉनिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, जुआ है, किया, ऐसा किया। तो यशोदा मैंने देखा मुंह के अंदर क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। केवल इतना ही नहीं, यशोदा मैंने देखा वह आश्चर्यचकित होगी, वो ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी को देखी और उस पृथ्वी के अंदर वृंदावन गोकुल है और उस गोकुल के अंदर वही सीन दिखाई पड़ रहा है। क्या है, कृष्ण है और यशोदा है, और यशोदा कृष्ण के मुंह में देख रही है, फिर उसके अंदर वैसा एकदम अनलिमिटेड तरीके से। तो ब्रह्मा जी उस लीला का स्मरण कर रहा है, भगवान आपने प्रत्यक्ष रूप में बता दिया इस लीला में, यू हैव शोन दिस, कि आप ब्रह्मांड के अंदर हो अभी और साथ साथ में सारा ब्रह्मांड भी आपके अंदर है। ये प्रत्यक्ष रूप में यशोदा मेरे को दिखाया, यही सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सच में आप ब्रह्मांड के अंदर भी रहते हो और बाहर भी रहते हो। तो इसलिए मैंने जो कहा है ये कन्फ्यूजन बच्चे के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूँ। तो इसलिए कहा गया है कि माई डियर लॉर्ड, इन दिस इनकारनेशन यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर सुप्रीम कंट्रोल ऑफ माया, ऑल दो यू आर विद इन दिस यूनिवर्स, आप इस जगत के अंदर रहते पर भी द होल मेटीरियल क्रिएशन इज विद इन यूर ट्रांसेंडेंटल बॉडी, आप इस जगत के अंदर हो और फिर ये जगत आपके अंदर है। ए फैक्ट यू डेमोन्स्ट्रेटेड बाई एस्टैब्लिशिंग द यूनिवर्स विद इन योर एब्डोमेन बिफोर योर मदर, ये सत्य है, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। तो इसके बाद आखिरी श्लोक, ये सेक्शन का, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन शुरुआत खत्म करके थोड़ा सार रूप में उसका सीरीज बताएं। वैसे सुनने के लिए थोड़ा सा तार्किक लगता है, लेकिन बाद में उसका ओवरव्यू लेंगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी, यस्या कुक्षो इदं सर्वं सात्मा भाति यया तथा तत्त्वय अपिह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। यस्य कुक्षो इदं सर्वं तो अंततः लास्ट में ये ब्रह्मा जी उपसंहार करते ये सेक्शन का, आप मेरी माँ हो ये सिद्ध है, ये माया विना, ये किमिदम माया विना, ये शब्द के द्वारा आप निश्चित रूप में आपके पास इनकंसीवेबल एनर्जी, ये भौतिक जगत से परे है, भौतिक बुद्धि से परे, ऐसे शक्ति से युक्त हो, यस्या कुक्षो इदम सर्वम, आप ये पूरा इदम सर्वम सारा जगत जो है आपके अंदर है, और स्थानम भाति यथा तथा, ये फिर भी होने पर भी उधर उसके अंदर आप प्रकट होते हो, तो इसलिए ये जो है ये तभी संभव है जब आप माया को अपने अंडर में आदेश में रखते हो, पूरा भौतिक जगत आपके सृष्टि है। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना करके, ये भगवद गीता का महत्वपूर्ण नवाध्याय का सिद्धांत है कि मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषोस्थः न च मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योगमेश्वरम, योगमेश्वरम जो है इसको वर्णन किया, योग ईश्वर को वर्णन किया भगवान ने, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, किस प्रकार भगवान इस जगत के अंदर भी है और बाहर भी है, किस प्रकार ये भौतिक जगत भगवान के अंदर भी है और उनके बाहर भी है, इस सिद्धांत वर्णन किया। तो सार रूप में ये जो आर्ग्यूमेंट्स है या ये जो चर्चा है उसको एक लाइन में चर्चा करेंगे ताकि एक क्लियर पिक्चर आ जाए, क्योंकि ये प्रार्थना है ब्रह्मा जी का, ये समझना चाहिए। ब्रह्मा जी आदि कवि है, बहुत विद्वान है, तो उनका श्लोक कितना कितना आसान भी नहीं होगा समझने के लिए। इसलिए सबसे पहला 12वां श्लोक में हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, हे भगवान, मैं आपका ये जो शरीर है उसके अंदर ये भौतिक ब्रह्मांड नामक जो गर्भ है उसके अंदर मैं बच्चे के रूप में हूँ, इसलिए मैं अपराध भी किया, तो इस प्रकार समझ लीजिए कि माँ के अंदर बच्चा उस गर्भ को लात मारता है तो फिर भी माँ बुरा नहीं मानती है, उसी प्रकार बुरा मत मानिए। तब कोई प्रश्न उठा सकता है कि भगवान प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है, बच्चा तभी माँ करके पुकारता है जब बाहर आता हो। तब ब्रह्मा जी ने 13वां श्लोक में चर्चा किया, मैं बाहर आया था। कैसे बाहर आया? ब्रह्मांड के अंदर नारायण सोए हुए थे और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से मैं उत्पन्न हुआ। तो माँ बच्चा को जन्म देती है, उसी प्रकार मैं भी आपके पेट से जन्म लिया। तो तब जैसे ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा तो भगवान ने कहा, ठीक बात है, तो तुम तो पुत्र नारायण का हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। तब कृष्ण ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, नारायणस्त्वम, आप ही नारायण हो, क्योंकि नारायण आपका अंग है। उसका प्रमाण उन्होंने शास्त्रों से ब्रह्मा जी ने दिया कि आप ही नारायण हो। ये नारायण शब्द आपको भी सूचित करता है, क्योंकि कृष्ण का आर्ग्यूमेंट था कि ये जो नारायण है वो तो पानी के ऊपर सोया हुआ है, मैं तो जमीन के ऊपर हूँ, मैं तो नारायण नहीं हूँ। तो नारायण नरायनः, जो सारे जीव जिनसे उत्पन्न होते हैं उनको नारायण कहा जाता है, सारे जीव उत्पन्न होने के बाद जिनका शरण लेते हैं उनको भी नारायण कहा जाता है, और जिसके द्वारा ना जीवित है सारे जीव उनको भी नारायण कहा जाता है। तो आपने भगवद्गीता अन्य शास्त्रों में कहा कि आपकी वजह से सब हो रहा है, तो आप ही नारायण हो। तब 15वां श्लोक में प्रश्न आया, ठीक है, मैं नारायण हूँ, लेकिन फिर भी एक बड़ा ब्रह्मांड के अंदर नारायण सोया हुआ है ना, तो ब्रह्मांड के अंदर नारायण सोया था तो नारायण भौतिक हो गया, क्योंकि सीमा जिसका है तो भौतिक हो सकता है। तो उसका जवाब देते हुए, नहीं, नारायण का कोई सीमा नहीं है, ये माया से परे है, उस बात का सबूत 15वें श्लोक में दिया। तब आखिरी आर्ग्यूमेंट भगवान ने कहा, वेरी गुड, पकड़ा गया तुम ब्रह्मा जी, आप बोलते हो कि पहले श्लोक में कि मेरे अंदर गर्भ है, वो गर्भ के अंदर आप हो, लेकिन अभी कहते हो कि मैं नारायण हूँ, वो नारायण जो है वो ब्रह्मांड के अंदर है, तो ये कैसे? उदाहरण अर्थ, एक मटका जो है घर के अंदर रह सकता है, लेकिन घर मटके के अंदर कैसे रह सकता है? कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारी प्रार्थनाओं में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं है, कि आप जो लीला की है यही सबूत है। कौन सा लीला है? आपकी माँ के सामने जो ब्रह्मांड को दर्शन कराने की जो लीला किया है, आप तो इस पृथ्वी में हो, लेकिन यशोदमय को क्या दिखाया आपने? कि आपके पेट में ब्रह्मांड है, और उसके अंदर भी आपने एक सबूत ने डबल डबल ट्रिपल सबूत दे दिया आपने। अभी कौन कहाँ है किसी को नहीं मालूम। मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ, इससे पता लगता है कि ये आपकी माया जो है अपार है, वो निश्चित रूप में आप मेरी माँ हो, ये बात सत्य के रूप मान लीजिए, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सार रूप में कनेक्शंस दिया, और खास करके ये जो वैसे एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो कनेक्शन मालूम नहीं पड़ता है, कि आचार्यों की टीका से थोड़ा बहुत मंथन करना पड़ता है तो कलेक्शन मालूम पड़ता है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ये सेक्शन है पूरा, आप मेरी माँ हो ये साबित करने के लिए कितना दिमाग खराब कर दी देगी। एक बार बोल दे आप मेरी माँ हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना ब्रह्मा ही जानते हैं। ऐसा बोला जाता, किसी की ऐसा कहावत है, कुछ हैंडराइटिंग होता है ना बच्चे का, बहुत खराब रहता है, जैसे मेरा बहुत खराब था, तो समझ में यही आता है ना, तो बोलते ब्रह्मलिपि है। ऐसा दक्षिण भारत में ऐसा कहावत है, खास करके मेरी माँ हमेशा बोल देती है कि तुम्हारा ये ब्रह्मलिपि है, ब्रह्मा जी समझ सकते तुम जाओ, तो ये ब्रह्मलिपि है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन लगे, तो बार बार इसको पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। कृष्ण लीलाओं का जो रस को प्रकाशित करना, ये प्रार्थनाओं का उद्देश्य है ब्रह्मा जी और अन्य भक्तों के प्रार्थनाओं का। नहीं तो अब देखिए ये जो कनेक्शन है, किस प्रकार भगवान के ये जो ब्रह्मांड को अपने पेट भी दिखाने वाला, ये जो लीला का कनेक्शन कि कहाँ कहाँ कैसे करके ब्रह्मा जी ने स्थापित किया, ठीक है, इसलिए ये पढ़ना चाहिए भक्तों को। हरे कृष्ण, इंद्राश्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।